आप 24 वर्षों से ज्ञान में हैं और 28 वर्षों से इस यज्ञ में समर्पित जीवन बिता रहे हैं। वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका हैं, ज्ञानमृत मासिक पत्रिका के संयुक्त संपादिका हैं एवं त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के सह संपादिका भी हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों जैसे भारत एकता युवा साइकिल अभियान, शिव संदेश रथ यात्रा अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान, मूल्यनिष्ठ मीडिया अभियान, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान इत्यादि के द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। आपने अफ्रीका महाद्वीप में भी ईश्वरीय सेवाएं दी। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी विभिन्न विषयों पर संबोधित किए हैं। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों में राहत शिविर लगाने के विशेष अनुभव आपके पास में है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के जितने भी ऐसे कोर्स जिनके लिए आप लेख भी लिखते हैं और जगह जगह जाकर के ऐसे लेखों का जिनसे कि हमारे जीवन परिवर्तित हो जाते हैं उनके पढ़ने के द्वारा, तो ऐसे अमृत संचय नाम से आपका एक लेख भी यहाँ पर छपा हुआ है, एक पुस्तक छपी हुई है। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, तो ऐसे स्व प्रबंधन, नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, इन सब विषयों पर आप वक्तव्य देती रहती हैं। क्लब, सभागार, स्टील प्लांट और लिबर्टी सूज, कोल माइंस इत्यादि संस्थानों में आपने अनेक प्रवचन दिए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी ज्ञान अमृत पत्रिका आती है तो उसे पढ़ करके हम सब अपने जीवन को धन्य समझते हैं, अर्थात कितने का ही जीवन उससे परिवर्तित होता है। तो ऐसे हमारी दीदी जी जहाँ भी जाती हैं वहाँ सभी भाई बहनों को ज्ञान से स्नान करवाती हैं और आज अपने इन ज्ञान रत्नों के द्वारा नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने, इस विषय को लेकर के हमारे पास में आई हुई है और हम स्मृति लब्धा अर्थात ज्ञान को अपने जीवन में कैसे धारण करें जो सदा ही बाबा याद रहे, इस विषय पर हम ज्ञान स्नान करने जा रहे हैं और हम फिर से अपनी ऐसी दीदी जी का स्वागत करना चाहेंगे, आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के अभी हम चिंतन करेंगे। गीता ज्ञान दाता बाबा हमें जो गीता सुना रहे हैं उस गीता का लक्ष्य ही है कि हमारी स्मृति एक रस बन जाए। बाबा मुरली में कहते हैं कि सारे पुरुषार्थ का आधार आपकी स्मृति पर है। जैसी स्मृति होती है वैसी ही समर्थी आ जाती है। अगर स्मृति शक्तिशाली होती है तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। तो आज हम अपनी स्मृतियों को चेक करेंगे कि वो कितनी बाबा की स्मृति में बनी है और कितनी हमें और बनानी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सफर कर रहा हो, आजकल तो बड़ा उग्रवाद आतंकवाद ये सब चलता है जगह जगह। अब सफर करते करते उसको अगर अपने इष्ट की स्मृति है तो वो निश्चिंत रहता है, लेकिन अगर सफर के दौरान उसको थोड़ी ये स्मृति आ जाए कि कोई बस में ट्रेन में आतंकवादी ना घुस जाए, कोई दंगा ना हो जाए, तो उसका फेस देखो कैसे एकदम बदल जाता है। तो स्मृति अंदर आती है और उसका असर हमारे चेहरे पे आता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्मृतियों में हमेशा बाबा की बताई हुई बातों को रखो। और बाबा ने सारा खेल ही स्मृति परिवर्तन का हमें समझाया है। एक बहुत अच्छी घटना है कि एक बार एक कवि कहीं जा रहा था तो उसके हाथ में उसकी डायरी थी जिसमें उसने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। अब जब जा रहा था तो बरसात आ गई और उसके हाथ में छाता था नहीं, तो उसको लगा कि मेरी ये डायरी तो भीग जाएगी। तो एक दुकानदार था, उसको उसने कहा भाई तुम मेरी इस डायरी को संभाल के रख लो, मैं कल जब वापस लौटूंगा तो ये तुमसे मैं ले लूंगा। तो दुकानदार ने डायरी लेके रख दी और जब वो कवि वापस लौटा तो उसने देखा कि दुकानदार तो इसमें से पन्ने फाड़ फाड़ के जो ग्राहक सामान ले रहे हैं उसकी पुड़िया बांध बांध के दे रहा है। तो उसने कहा रही ये क्या कर रहे हो? तो दुकानदार ने कहा भाई मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं तो भूल गया कि तुम्हारी वाली डायरी है, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैंने इसमें से केवल वही वाले पन्ने फाड़े हैं जो लिखे हुए थे। जो कोरे कागज है ना वो ज्यों के त्यों रखे हैं। अब उस कवि पर बेचारे पे क्या बीती होगी वो तो वो जाने, लेकिन हमारे अंदर भी एक डायरी है, स्मृतियों की डायरी, उसके बहुत सारे पन्ने तो लिखे पड़े हैं और कुछ पन्ने कोरे भी हैं। अब अगर हमें फाड़ने की बात कही जाए तो हम कौन से फाड़ना चाहेंगे, लिखे वाले या बिना लिखे वाले, कौन से फाड़ेंगे? लिखे वाले फाड़ेंगे ना। तो उन पन्नों पे क्या क्या लिखा हुआ है? जब हम बाबा के बने तो हमने देखा हमारी डायरी तो पूरी भरी पड़ी है और उसमें इतना कुछ लिखा पड़ा है कि बाबा वाली बातें लिखते हैं जगह ही नहीं मिलती है लिखने के लिए। 63 जन्मों की इतनी बातें लिखी पड़ी हैं, तो बाबा ने कहा पहले इन्हें मिटाओ, इन्हें मिटाओगे तो मेरी वाली बातों को जगह मिलेगी और तब तुम स्मृति लब्धा बनोगे। अब पुरानी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारी डायरी के पन्नों पे क्या क्या लिखा है, लोग जो रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि मनुष्य की 80% स्मृतियां तो पास्ट की होती है। अब जीना है वर्तमान में और डायरी पे लिखी हैं पुरानी बातें। अब 80% समय तो पुरानी बातों में चला गया, वर्तमान के लिए 20% बचा, तो वर्तमान के काम हम कैसे करेंगे? वर्तमान के लिए हमें 100% टाइम चाहिए ताकि हम अपने काम समेटें। और इसलिए कई बार व्यक्ति को लगता है कि समय कम है, काम ज्यादा है, ये भी करना है, ये भी करना है, हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारा समय पुरानी बातों के चिंतन में चला गया तो वर्तमान में तनाव आता है। अगर हम उन पुराने पन्नों को फाड़ दें, मन वहां जाए ही नहीं, तो 100% समय वर्तमान में बचेगा और हम कितना भी काम करके फिर भी महसूस करेंगे कि हमारे पास बहुत समय है। जैसे हमारी दादी जानकी कहती हैं कि तुम सारा दिन क्या करते हो, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं तो खाली हूँ। अब दादी ऐसा क्यों बोलती हैं? क्योंकि पास्ट की कोई बात स्मृति में आती नहीं, और जब पास्ट से व्यक्ति फ्री हो जाता है तो वर्तमान में कोई ज्यादा काम है नहीं। इसलिए हम अपने पुराने पन्ने फाड़ें और नए पन्नों पे प्रभु प्रेम की नई कविताएं लिखें, अर्थात नई इबारत लिखें। जब पुराना कुछ काम हो जाता है तो हम कहते हैं हो गया, इसका अर्थ क्या है? हुआ और चला गया, अर्थात गुजर गया, अर्थात मर गया। लेकिन हम उस मरे हुए को, गुजरे हुए को पकड़ करके फिर ले आते हैं। तो मरे हुए को पकड़ करके ले आए, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक मुर्दा चीज हमारे वर्तमान के जिंदा जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। भाई हम किसी मुर्दे को और जीवित व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने क्यों देते हैं? जो चला गया उसे जाने दे, उसे वापस क्यों बुलाते हैं? क्या वर्तमान में हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम बार बार पुरानी बातों को बुलाते हैं? इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि पास्ट की उन बातों को फुल स्टॉप लगा दो, भूल जाओ, जिन बातों से आपके पुरुषार्थ में कोई फायदा नहीं है। यूं तो बाबा ने भी हमें पास्ट याद कराया है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, तो बाबा ने हमको देखिए आदि काल तक का पास्ट सुनाया। सतयुग में आप बच्चे देवता थे, त्रेता में भी देवता थे, द्वापर में भी आपकी मूर्ति पूजी गई, और वर्तमान समय आप बच्चे वरदानी मुहूर्त है, ये तो बाबा ने भी याद कराया। लेकिन बाबा ने जो याद कराया वो बेहद की स्मृति है। बाबा ने जो याद कराया उससे पुरुषार्थ में मदद मिलती है, बल मिलता है। लेकिन जब हम हद की छोटी छोटी बातों को याद करते हैं तो पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। जैसे कई बार कई लोग अपनी समस्या आके सुनाते हैं कि मुझे पास्ट बहुत याद आता है। भाई क्या बात याद आती है? तो कहती हैं देखो मेरे पास एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके पिता से मेरा कोई 15 साल पहले झगड़ा हुआ था। तो जब भी इस बच्चे का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे इसका पिता याद आ जाता है, उसका झगड़ा याद आ जाता है, उसकी बातें याद आ जाती। अब इस बच्चे के बिना मेरा काम नहीं चलता क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और इसको भी मेरी जरूरत है, इसको भी रोजगार चाहिए, मेरे पास काम कर रहा है। यूं तो काम के हिसाब से हम दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मुख देखते ही मेरे को वो पुरानी बात याद आ जाती। अब अगर हम इस तरह से, ये तो एक मैंने मिसाल दिया, किसी ने अपनी बात सुनाई उसका, लेकिन अगर इस तरह से हम पुरानी बात को याद करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम इकट्ठे भी रहेंगे लेकिन इकट्ठे रहने का आनंद नहीं लेंगे। जैसे हम इकट्ठे रहने को अर्थात साथ को ढो रहे हैं, हमारे लिए वो भार है, तनाव पैदा करता है, उसका माथा देखते ही हमको एक बुरी भावना, नेगेटिव थॉट, एक भारीपन आ जाता है। तो इसका समाधान क्या है? अगर हम ये बात सोच लें कि भाई हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो सकता है, उग्रसेन के घर में कंस पैदा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो, राक्षस के घर में देवता पैदा हो गया और देवता के घर में राक्षस पैदा हो गया, इसका पिता जैसा भी था उससे मुझे क्या लेना, बच्चा तो बहुत अच्छा। तो वर्तमान के गुणों को देख करके हम वर्तमान का फायदा उठाएं और भूतकाल में जो भी कुछ हुआ, एक पीढ़ी की बात को हम दूसरी पीढ़ी तक क्यों ढोते हैं? कहते हैं रात गई और बात गई, बात तो चली जाती है, सेकंड में चली जाती है। जैसे नदी बहती है तो पानी आगे निकल जाता है, समय भी ऐसे ही है, चला जाता है। लेकिन हम उस गए हुए समय को फिर पकड़ करके ले आते हैं तो वर्तमान का क्या करेंगे, वर्तमान का फायदा कैसे उठाएंगे? इसलिए बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप अगर बनना है तो डायरी को बिल्कुल खाली करो, पुरानी बातों को याद नहीं करो। पुरानी बातें, पुरानी दुनिया की बातें, पराई बातें, वो सब बातें काम की होती तो भगवान हमें नई बातें क्यों सुनाता? जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, पता नहीं समस्याओं से मुक्ति कब मिलेगी। देखो 2 महीने पहले तो वो बीमार हो गया था और 1 महीने पहले एक बहुत बड़ा खर्चा आ गया था और 15 दिन पहले एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति था हमें छोड़ करके चला गया था, पता नहीं ये समस्या वो समस्या वो समस्या। अरे भाई समस्या आई थी चली गई, अब तुम उनकी क्यों दोहराई कर रहे हो? कोई पेपर देना है क्या? अब मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा हॉल में बैठा है, उसके हाथ में पेपर है और वो सोचने लगे, पहले मैंने आठवीं की परीक्षा पास की एक चार साल पहले, फिर मैंने नौवीं की परीक्षा पास की तीन साल पहले, फिर मैंने दसवीं की परीक्षा पास की दो साल पहले, फिर मैंने ग्यारहवीं की परीक्षा पास की, पता नहीं इन परीक्षाओं से मैं कब छूटूंगा। अरे पास की तो अच्छा हुआ ना, तुम्हारी क्लास आगे बढ़ गई, अभी तुम तुम्हारे हाथ में जो पेपर है उसका चिंतन करो। अब तुम याद कर रहे हो मैंने वो भी पास किया वो भी पास किया, तो ये जो हाथ में पकड़ा इसका क्या हाल होगा, इसमें तो तुम फेल ही हो जाओगे, पीछे वालों में तो पास हो गए थे। इसलिए अब अगर कोई समस्या सामने है तो मुझे ये सोचना है कि इसका समाधान क्या है, और बाबा ने हमको समाधान बताए हुए। बाबा ने पहले तो हमें स्मृति स्वरूप होने का अर्थ बताया, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने धाम की स्मृति और अपने अविनाशी पिता की स्मृति। इस रंगमंच के ऊपर जब हम पार्ट प्ले करते हैं तो ये तीनों स्मृतियां हमारी बनी रही हैं। रंगमंच के ऊपर कोई भी कलाकार जब पार्ट प्ले करता है तो कहते हैं रंगमंच के दो पार्ट होते हैं, एक होती है फ्रंट स्टेज और एक होती है बैक स्टेज। तो जब फ्रंट स्टेज पे कलाकार आता है तो कई तरह के रोल प्ले करता है, कभी हंसता है कभी रोता है कभी गाता है कभी गुस्सा भी करता है कभी रूठ जाता है, जैसा जैसा उसका रोल होता है वैरायटी वैरायटी प्ले करता है। लेकिन फ्रंट स्टेज पे पार्ट प्ले करते हुए भी उसकी मन की स्थिति कैसी रहती है, बैक स्टेज जैसी रहती है। और जो बैक स्टेज होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, बड़ी आरामदायक होती है। फ्रंट पे बेशक कितना भी कष्ट कारी अभिनय करे, कितना भी जोखिम भरा अनुभव करे, उसको लगेगा कि मुझे छलांग लगानी है, मैं गिर जाऊंगा या मुझे चोट लग जाएगी, कुछ भी हो, पर उसको ये तसल्ली रहती है कि बैक स्टेज पे बहुत लोग हैं दवा पानी करने वाले, सेवा करने वाले, इसलिए मैं रोल प्ले करके वहां जाऊंगा तो मेरी सेवा अच्छे से होगी। तो वो आश्वस्त रहता है और उस आश्वासन के साथ पार्ट प्ले करता है। अब ये तो हमने लौकिक पार्टधारियों की बात की, हम सब तो अलौकिक पार्टधारी हैं और हमारी भी ये बहुत बड़ी स्टेज है जिसके ऊपर हम कई तरह के रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ रोल प्ले करते भी हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहे, बैक स्टेज जैसी। तो हमारी बैक स्टेज कहाँ है, जहाँ हमारे हमको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, जहाँ हम भी आराम करेंगे, वो हमारी बैक स्टेज कौन सी है, पर्दे के पीछे की जगह कौन सी है। ये तो रंगमंच है, पर्दे के पीछे की जगह है परम धाम। तो रंगमंच के ऊपर जब हम रोल प्ले करते हैं तो हमारी स्मृति उस बैक स्टेज जैसी रहे। तो परम धाम में हम कैसे थे, स्वरूपस्थ थे, अपने मूल गुणों में संपन्न थे, बाबा के बहुत करीब थे। तो अगर हमको ये स्मृति रहती है कि मैं हूँ तो वहाँ का, मेरा दवा पानी सब वहाँ होगा, या मेरा घर वहाँ है, या मुझे प्यार पुचकार वहाँ मिलेगा, मिल रहा है, और ये तो मैं केवल रोल प्ले कर रहा हूँ, तो रोल प्ले करते भी हमारी स्थिति स्मृति स्वरूप रहेगी, हम स्मृति लब्धा रहेंगे और उस कलाकार की तरह से कितने भी रोल प्ले करेंगे लेकिन हमारा मन नहीं थकेगा। व्यक्ति का मन थकता है, वास्तव में शरीर से अधिक मन थकता है, और उस थके हुए मन से ही और समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन जब मन स्मृति लब्धा है, मन आश्वस्त है, मन पॉजिटिव है, मन आनंदित है, तो रोल कितना भी जोखिम भरा हो वो भी आनंददायी बनता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कर्म करने की विधि सिखाई। हमारी जो स्मृतियां बनती हैं वो कर्म के दौरान हम कैसा चिंतन कर रहे हैं उससे हमारी स्मृतियां बनती हैं। अब जैसे किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि आप रंगमंच के ऊपर एक खिलाड़ी हैं या आप एक रंगमंच एक मुसाफिर हैं, तो जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, अपनी टीम के साथ जगह जगह खेल खेलता है। कभी वो श्रीलंका में खेलेगा, कभी पाकिस्तान में खेलेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, कभी दो खिलाड़ी कम हो जाएंगे, कभी दो खिलाड़ी बदल जाएंगे, कभी कैप्टन बदल जाएगा, कभी उनका कोच बदल जाएगा, इस तरह से टीम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। तो बाबा कहते हैं देखो आप बच्चों की भी ये टीम है, कई बार तो पूरी की पूरी फैमिली ही पुनर्जन्म में इकट्ठी हो जाती है, कई बार पूरी फैमिली में से दो लोग कट करके चार लोग नए जुड़ जाते हैं। जैसे सतयुग में हम सब इकट्ठे थे, उसके बाद द्वापर में आए तो सब एक ही फैमिली में थोड़े गए, अलग अलग बिखर गए, और आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं है, इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि जैसे वो वाला खेल कई बार वनडे होता है और कई बार थोड़ा दो तीन चार दिन का भी होता है, तो इस तरह से हमारा ये जो रंगमंच के ऊपर जिन लोगों के साथ पार्ट चल रहा है, वो छोटा भी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो किसी चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो संबंधों की गांठ है उसको ढीला ढीला बांधो। अगर गांठ थोड़ी देर में खोलनी हो तो क्या करते हैं, उसको ढीला बांधते हैं, कहते हैं भाई ज्यादा मत खींचो, झंडे की गांठ कैसी बांधते, ढीली ढीली बांधते हैं ताकि डोरी खींचे और झट खुल जाए। अगर उसको टाइट बांध दे तो क्या होगा, थोड़ी देर में खोलनी है ना, अभी अभी बांधा, अभी अभी खोलनी है, तो ढीली ढीली बांधो। तो जीवन के जो संबंध है उनके साथ भी गांठ कैसी बांधनी चाहिए, ढीली ढीली बांधनी चाहिए, अभी अभी बांधी, अभी थोड़ी देर में खोलनी है, कुछ समय के बाद खोलनी है, ये तो निश्चित है। तो जो व्यक्ति ये स्मृति में रखता है कि मुझे इन संबंधों को बहुत टाइट नहीं बनाना, माता पिता भाई बंधु जो भी देह के संबंध हैं, व्यवसायिक संबंध हैं, कर्म के संबंध हैं, व्यवहार के संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, धार्मिक संबंध हैं, कई तरह के संबंध होते, तो अगर हम ये स्मृति में रखेंगे कि इन सब के बीच में रहना है लेकिन एक दिन इनसे अलग भी होना है, तो भी स्मृति कैसी बनी रहेगी, अविनाशी संबंध तो उसके साथ है और ये टेम्परेरी रिलेशन है, इनको निभाना भी है लेकिन गांठ को ढीला ढीला रखना है, तो इनके बीच में रहते हुए हम उनका आनंद भी लेंगे लेकिन राग और द्वेष से बचे रहेंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात सिखाई कि लौकिक संबंधों के बीच में रहते भी पारलौकिक संबंध को भूलो नहीं, शरीर निर्वाह करते भी आत्म निर्वाह को भूलो नहीं, धन की वृद्धि करते भी याद की विधि को और याद की कमाई को भूलो नहीं, अनेक प्रकार के लोगों के बीच में रहते हुए भी, कोई नेगेटिव है, कोई विरोधी है, कोई अड़चन डालने वाला है, उनके बीच में रहते हुए भी अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को, रहमदिल स्वरूप को भूलो नहीं। तो अगर ये स्मृति रहेगी जो बाबा ने हमें याद दिलाई है, तो हम कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे और किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हुए हम अपनी अलौकिक कमाई करते रहेंगे। आप सबने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें घरों में काम करती हैं, हलवाई भी काम करता है, किचन में काम करता है, तो जब वो गर्म बर्तन को पकड़ता है तो बीच में कपड़े को रखता है, सीधा हाथ नहीं लगाता, या एक पकड़ होता है उससे पकड़ता है। अगर वो बर्तन को सीधा पकड़ ले तो क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा। बर्तन तो गर्म है, बर्तन तो गर्मी को झेल लेगा, लेकिन हमारे हाथ तो उस गर्माहट को नहीं झेल सकते ना, इसलिए कपड़े के अंदर से गर्मी पास नहीं होती। कहते हैं कपड़ा उष्मा का कुचालक होता है, बर्तन की गर्मी कपड़े में आएगी नहीं, कपड़े में नहीं आएगी तो हमारे हाथ में भी नहीं आएगी। इसलिए हमारा हाथ सुरक्षित रहेगा, हम कितना भी काम करेंगे। तो बीच में हमने किसको रखा, कपड़े को रखा। इसी तरह से जब हम कोई भी लौकिक काम करते हैं, लौकिक काम तो करने ही, फर्ज तो पूरे करने ही, सब व्यक्ति फर्ज से बंधे हुए हैं, लेकिन लौकिक काम करते भी कपड़े की तरह बीच में किसको रखेंगे, बाबा को रखेंगे। ये कार्य मुझे किसने दिया, अब हम मर्जीवा बन गए, अब हमने अपनी स्मृतियों को चेंज कर लिया, अब हमारा नया जन्म है। पहले हम सोचते थे कि हम अपने बाल बच्चों की पालना कर रहे हैं, अब हमने बीच में शिव बाबा को रख लिया। ये भी आत्मा है, इसकी कर्मेंद्रियां बेशक छोटी हैं, लेकिन है तो ये पुराने जमाने की पुरानी बूढ़ी आत्मा, 84 जन्मों वाली बहुत अनुभवी आत्मा, कर्मेंद्रियां छोटी हैं तो क्या हुआ। और नाते में तो ये भी हमारा भाई है, भगवान का बच्चा है। तो ये हमने बीच में क्या रखा, बीच में हमने बाबा को रख लिया, बाबा के ज्ञान को रख लिया। अब हम बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे तो कैसा व्यवहार होगा, ये बहुत ही सुखदायी व्यवहार होगा, फर्ज पूरा करेंगे। अगर मान लो हम ऐसे सोचते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, जैसे मैं कहता हूँ वैसे क्यों नहीं चलता, जैसे मैं करता हूँ वैसे क्यों नहीं करता, तो ये फर्ज नहीं लेकिन मर्ज बन जाएगा। तो अगर हम फर्ज निभाएंगे बाबा की याद में तो वो हमें अर्श पे ले जाएगा, और अगर हम फर्ज को मर्ज बना लेंगे तो फर्ज निभाते निभाते चिंतित रहेंगे, उदास रहेंगे, भारी रहेंगे। इसलिए हर संबंध के बीच में हम बाबा को रखेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो। जैसे बाबा ने सब संबंधों के लिए हमको स्मृति दी है, बड़े के साथ संबंध निभाओ तो क्या सोचो, छोटों के साथ, बराबर वालों के साथ, हरेक के लिए संबंध को अलौकिक बनाने की विधि बताई है। तो ये हमने बाबा को बीच में रख लिया। कर्म करते हुए जब हम बाबा को बीच में रखते हैं तो कर्म का बंधन नहीं बंधता, कर्म संबंध बन जाता है, सेवा का संबंध बन जाता है, कमाई का साधन बन जाता है, और हम उसको करते हुए भी डिटैच रहते हैं, स्मृति में रहते हैं। एक वो रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े संत हुए हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु, वो कहा करते थे कि जब आप काम करते हो तो एक हाथ से काम करो और एक हाथ से भगवान को पकड़ के रखो, लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पकड़ लो। इसका अर्थ क्या हुआ, बाबा कहते हैं जब कर्म करो तो कर्म योगी बनो, हाथ से कर्म करो और मन से बाबा को पकड़ के रखो, हथकारवल दिल करतारवल। और जब काम पूरा हो जाए तो हाथ का काम भी छूट गया, अब मन पूरी तरह से बाबा में लग गया। तो अभी अभी कर्म किया, अभी अभी 2 मिनट स्मृति स्वरूप बने, अभी अभी कर्म किया, अभी अभी 2 मिनट फिर स्मृति स्वरूप बने। तो हम बच्चे ऐसे करते करते इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो बाबा चाहते हैं कि बच्चों की स्मृति ध्रुव स्मृति हो जाए, क्रस स्मृति हो जाए, निरंतर स्मृति हो जाए। अभी की जो मुरली थी उसमें भी बाबा ने 2 बातें कही, सेवा को बढ़ाते चलो और अपनी याद को भी स्थिर रखो, याद को भी बढ़ाते चलो। हम बच्चों के 2 ही काम है, एक याद है और एक सेवा है, लेकिन सेवा से पहले याद। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं व्यवहार और परमार्थ, तो व्यवहार से पहले परमार्थ है। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, अर्थात परम पिता के अर्थ। तो जब हम परम अर्थ कोई काम करते हैं तो व्यवहार उससे अपने आप सिद्ध हो जाता है। एक व्यक्ति था जिसको व्यायाम करने का बहुत शौक था, ये एक सच्ची घटना है कुछ बरस पहले की। तो वो सोचता था कि मैं जैसे खुद व्यायाम करके स्वस्थ रहता हूँ, ऐसे बाकियों को भी सिखाऊं। यूपी का था वो व्यक्ति, झांसी के आसपास का। तो ऑफिस से जैसे ही छुट्टी होती थी, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेता था, ओ भाई ऐसे व्यायाम करो, ऐसे व्यायाम करो। सुबह सुबह भी जल्दी तैयार होके और गली मोहल्ले में लोगों को बुलाता था, आओ तुमको सिखाऊं। तो ऐसे करते करते बहुत लोग सीख गए, करने लगे। फिर उसने एक व्यायाम शाला खोली और उसमें लोगों को फ्री सिखाने लगा। फिर उसने सोचा, ये मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, इसके बजाय क्यों ना मैं लोगों को सिखाऊं, अच्छा है, इनके हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो उसने नौकरी भी छोड़ दी। तो लोगों ने सोचा, देखो ये कितनी फ्री सेवा करता है, तो इसके बाल बच्चों को तो भोजन पानी की जरूरत है। तो जो लोग उससे सीखते थे, बिना मांगे उसके घर में सब चीजें दे आते थे, और कभी भी उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं हुई। बाद में उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन लोग उसकी सेवा को याद करते ही हैं। तो परम अर्थ जब वो काम करने लगा, अर्थात निस्वार्थ भाव से काम करने लगा, तो व्यवहार अपने आप संभल गया। लोगों को उसने कहा नहीं कि भाई मेरे घर परिवार को संभालो, लेकिन लोग अपने आप बिना कहे स्वेच्छा से संभालने लगे। तो जो लौकिक दुनिया में भी भले श्रीमत को नहीं जानते, लेकिन लौकिक दुनिया में भी कोई अच्छा काम करते हैं, समाज कल्याण का निस्वार्थ काम करते हैं, तो लोगों के मन में ऑटोमेटिक भाव पैदा होता है कि हम इसकी हेल्प करें। और यहाँ तो हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो जब परम अर्थ काम करने लगते हैं, जब बाबा के लिए अपना समय स्वास्थ्य संकल्प धन लगाने लगते हैं, तो बहुत लोगों को प्रेरणा आने लगती है कि हम इसकी हेल्प करें, अच्छा है ये अलौकिक सेवा करता है, तो इसके लौकिक कार्यों में हम मदद कर दें तो हमें भी कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा, जो बच्चा परम अर्थ करेगा उसको कभी भी व्यवहार में तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए जितना जितना हम श्रीमत पर चलते चलेंगे, हमारे लौकिक काम ऑटोमेटिक संवरते चले जाएंगे, और उसमें हमारी भी कमाई जमा होगी और लोगों को हमसे प्रेरणा मिलेगी। तो जैसे बाबा ने कहा, पुरानी स्मृतियों से हमें अपने को बचाना है, व्यर्थ स्मृतियों से, संबंधों से नष्टो मोहा बनना है। इसी तरह से एक तीसरी चीज और है जो मन को उलझाती है, और वो है इच्छाएं, साधन। समयानुसार विज्ञान नए नए साधन दे रहा है, यज्ञ में भी हम देखते हैं नए नए साधन आ रही हैं, प्राप्तियां बढ़ रही हैं। पुराने समय की भेंट में आज सुविधाएं ज्यादा हैं, तो कई बार मनुष्य के भीतर कई प्रकार की इच्छाएं जागती हैं और उसको लगता है कि ये तो मेरी आवश्यकता है, ये पूरी हो जानी चाहिए। और कई बार स्मृति में वो बाधा डालने लगती हैं, बैठते हैं बाबा की याद में और फिर कोई देखी हुई चीज या कोई आकर्षण वाली चीज बुद्धि में आ जाती है तो ध्यान फिर अटके वहाँ चला जाता है, फिर स्मृति स्वरूप होने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ ध्यान चला जाता है। तो इसके लिए भी प्यारे बाबा हमें सावधानी देते हैं कि बच्चे साधना को बढ़ाओगे तो साधन अपने आप पीछे चले आएंगे। साधन तो साधना की परछाई है, अगर साधना बढ़ेगी तो साधन आपके दास बनेंगे, लेकिन आप साधना को बढ़ाए बिना साधनों के पीछे भागेंगे तो वो आपके मालिक बन जाएंगे। आप साधनों को अरेंज तो कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसी साधन संपन्नता साधनहीनता से भी भारी पड़ती है, अर्थात बिना साधनों के हम ज्यादा सुखी थे, साधन आए तो और ही हमारा तनाव बढ़ गया, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि साधन को यूज करने के लिए, उसका सुख लेने के लिए हमने साधना को अरेंज नहीं किया। तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत सुंदर सुंदर भवन बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, कोठियों के आगे एक बगीचा होता है, लोन जिसको बोलते हैं, और उस लोन का जो माली होता है, या शांतिवन में भी बहुत सुंदर सुंदर लोन है जहाँ बैठ के हम बाबा को याद करते हैं, तो जो लोन का माली होता है वो लोन में जो दूब उगाई जाती है, घास उगाई जाती है, उसको थोड़े थोड़े दिनों के बाद काट देता है। अगर वो ना काटे तो क्या होगा, ना काटे तो वो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, कहीं लंबी होगी, कहीं छोटी होगी, कहीं सूखेगी, अच्छी नहीं लगेगी। बगीचा सुंदर कब लगता है, लोन सुंदर कब लगता है, जब घास बिल्कुल ऊपर से एक समान हो, कटी हुई हो, ऐसे लगता है जैसे कोई मखमली गलीचा बिछा हुआ है। अब देखिए, बगीचे की सुंदरता के लिए हम दूब को तो काट देते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी तो एक बगीचा है ना, उसमें इच्छाओं की दूब है। अगर हम उस इच्छा रूपी दूब की काट छांट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी तो थोड़े थोड़े दिन में कट जानी चाहिए ना। फालतू की इच्छाएं जो उगाती हैं, अगर हम उसको थोड़े थोड़े दिनों में चेक करके देखें इसकी क्या जरूरत है, इसके बिना भी तो काम चल रहा है, आज तक भी तो चल रहा था, और अगर ये आएगी तो इसके साथ और क्या क्या आएगा, उसको भी हम पहले से देख ले और रोज अपने भीतर के बगीचे की काट छांट करें, ये घास नहीं चाहिए, ये पौधा भी नहीं चाहिए, ये भी फालतू उगा हुआ है, ये भी फालतू उगा हुआ है, तो देखो भीतर कितना सुकून रहेगा, हैं, भीतर कितना हल्कापन रहेगा। नहीं तो बिना काट छांट के तो क्या होता है, बगीचा थोड़े दिन में जंगल बन जाता है, और बिना काट छांट के हमारे भीतर भी क्या होता है, और फिर जंगल में क्या होता है, जहरीले जंतु जानवर वो भी पैदा हो जाते हैं। बगीचे में थोड़े जहरीले जंतु जानवर होते हैं, वो तो जंगल में होते हैं। तो अगर अंदर की काट छांट नहीं होगी तो बहुत तरह की व्यर्थ बातें, उसके बाद वो जहरीली चीजें भी उसमें आ जाएंगी। इसलिए हम प्रतिदिन अपने भीतर देखें, हर रोज देखें। बाकी सब चीजों को हम रोज देखते हैं, मकान की सफाई रोज है, कपड़ों की सफाई रोज है, बगीचे की भी सफाई रोज है, कपड़ों की भी धुलाई रोज है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है भीतर की सफाई और भीतर की धुलाई। अगर वहां कोई व्यर्थ बात पड़ी है तो उसको निकाल के फेंको। लोग कंप्यूटर को भी देखते हैं, ये फाइल इसका काम पूरा हो गया इसको निकाल दो, ये फाइल का भी काम पूरा हो गया इसको भी निकाल दो, भाई पड़ी रहे तो क्या मुश्किल है, तो कहते नहीं ये भारी हो जाता है, रुक रुक के चलता है, अगर बहुत फाइलें भर जाएंगी तो इसकी गति धीमी हो जाएगी। अब कंप्यूटर की गति हमें तेज चाहिए, लेकिन हमें हमारा मन जो बोझिल हो जाता है उसकी गति भी तो तेज चाहिए ना। अब अगर उसमें भरी है बातें फालतू की तो उसको उड़ाना चाहेंगे तो कैसे उड़ेगा, स्मृति लब्धा कैसे बनेगा, वो तो यही घूमता रह जाएगा। इसलिए हम बच्चे प्रतिदिन अपने इस कंप्यूटर को देखें, जिन चीजों का काम पूरा हो गया उनको निकाल दें। एक बार हमने एक स्कूल में बच्चों के बीच में, बच्चों को भी तो स्मृति चाहिए, जैसे हम भी बाबा के स्टूडेंट हैं, हम स्मृति लब्धा बने तो हमारा कल्याण होगा, लौकिक दुनिया में भी बच्चों को स्मृति का विकास बहुत चाहिए। तो एक बार स्मृति विकास पे जब कार्यक्रम था तो हमने बच्चों को कहा महात्मा गांधी पे एक ऐसे लिखो, और हमने कहा देखो कागज हम देंगे, आप अपने घर से कागज मत लाना। तो जब हमने बच्चों को कागज डिस्ट्रीब्यूट किए तो बच्चे उलट पलट के देखने लगे, हमने कहा क्या हुआ भाई लिखते क्यों नहीं हो, तो कहते हैं ये तो दोनों तरफ से लिखा पड़ा है, हम लिखे का। तो हमने कहा आप स्मृति विकास करना चाहते हो ना, तो जब स्मृति में पहले ही दोनों तरफ से लिखा पड़ा होगा तो आप नया क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखे हुए कागज पे कुछ नहीं लिख सकते, तो जहाँ पहले ही भरी पड़ी है बातें वहां बाबा को कैसे बिठाएंगे, कोरे कागज पे ही लिख सकते हैं ना। तो बच्चों को बात समझ में आई, टीवी की बातें भरी पड़ी है, गेम्स की बातें भरी पड़ी है और बातें भरी पड़ी हैं, तो पाठ याद होते नहीं है। तो जैसे हम उन बच्चों को सिखाते हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम पे भी ये नियम लागू होता है कि हम रोज अपने मन की स्लेट को स्वच्छ करें और उसके ऊपर रोज नई नई ईश्वरीय प्रेम की बातें कविताएं लिखें। देखो मीरा अनपढ़ थी, किसी स्कूल में नहीं पढ़ी थी, कोई कवयित्री नहीं थी, कोई लेखिका नहीं थी, लेकिन भगवान के प्यार में रोज नए गीत लिखती थी, बनाती थी, गाती थी, और उन गीतों पे आज लोग पीएचडी करते हैं। तो प्रेम एक ऐसी चीज है, ईश्वरीय प्रेम एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बहुत विद्वान बना देता है। तो हम सब बाबा के बच्चे किससे प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। बाबा कहते हैं आप सभी ज्ञान मीराएं हो, तो हमको भी रोज क्या करना है, ईश्वर प्रेम के गीत बनाने हैं, गुनगुनाने हैं, लिखने हैं और पुरानी बातों से मन को खाली करके जब हम स्मृति लब्धा बनेंगे, जब प्रेम के गीत गाएंगे गुनगुनाएंगे तो पुरानी बातें तो वैसे ही चली जाएंगी और स्मृति लब्धा बन जाएंगे। ओम शांति।